मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज 13 अक्टूबर 2015 है और आप लोगों को मालूम है कि एकेडमी की अगली जो क्लासेज होनी है, जो अगला बैच होना है, वो फरवरी 2016 का है। एक बैच तो अभी अक्टूबर में लग रहा है। 2016 के बैच के लिए 3 नौजवान साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं अवनी जोशी सोन कक्ष मध्य प्रदेश से, अनिल सोलंकी जूनागढ़ गुजरात से और संगीत कुमार इजिमाला केरल से। तो अवनी, अनिल और संगीत, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब आए और मेरी कामना यही है और कोशिश भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा यहां से पाकर जाएं। अभी अक्टूबर के क्लास के लिए ऑलरेडी यहां पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे स्टूडेंट भी लगभग पूरी तरह से मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। मित्रों, एक अच्छी खबर इस बात को लेकर के है कि आप लोगों को मालूम है कि कल प्री एग्जाम जो अभी हुए थे कुछ दिनों पहले ही, उसके रिजल्ट घोषित हो गए हैं, सिविल सर्विस के प्री एग्जाम के रिजल्ट। तो मेरे पास जो भी सूचना मिली है उसके अनुसार जो फर्स्ट बैच के 3 स्टूडेंट थे उन्होंने प्री एग्जाम में सफलता पाई है। इन 3 साथियों के नाम हैं BS मीना जयपुर से, दिनेश शर्मा बूंदी से और अनुषा अग्रवाल मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो मित्रों, BS मीना को, दिनेश शर्मा को और अनुषा अग्रवाल को, उनके बैच के सभी साथियों की तरफ से, इस ऑडियो गाइडेंस के सभी श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से और मैं अपनी पत्नी और अपनी तरफ से बहुत तो बहुत बधाइयां देता हूं और साथ ही शुभकामनाएं भी, ईश्वर से प्रार्थना भी कि वे मेंस के एग्जाम में भी अपनी सफलता की सूचना मुझे दें और उन्हें घोषित करके इस सूचना को आप लोगों तक पहुंचाकर जो आत्मसंतोष मिलता है उसे मैं अनुभव कर सकूं। तो BS मीना, दिनेश शर्मा और अनुषा, आप सबको बहुत बहुत बधाई और अब आपको बिना एक क्षण भी जाया किए हुए मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि एकेडमी इस बीच जो लगातार आप लोगों को स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड करती रही है और मैं समझता हूं कि शायद जो फर्स्ट बैच है उसके स्पेशल ऑडियो की संख्या लगभग 45 के करीब तो पहुंची गई होगी। तो मित्रों, ये जो 45 के लगभग जो आपको स्पेशल ऑडियो मिले हैं ये पूरी तरह से आपके मेंस और इंटरव्यू पर ही बेस्ड हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड हैं और जो क्वेश्चंस भी इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, नो डाउट कि क्वेश्चंस ऐसे लिए गए हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा हम संभावना मानकर चल सकते हैं। साथ ही मैंने उन्हें मॉडल के तौर पर आप लोगों को बताने की कोशिश की है ताकि आप इस मॉडल का इस्तेमाल न केवल अपने मेंस की तैयारी में ही कर सकें बल्कि उत्तर लिखने में भी कर सकें। तो जिनको भी सफलताएं मिली हैं, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं, जो इसे सुनते हैं, मेरी उन्हें सलाह होगी कि अब वे अपने एक एक क्षण का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रेंड्स, जो रियल एग्जामिनेशन है सिविल सर्विस की वो मेंस ही है। प्री तो एक तरह से छटनी की प्रोसेस है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर कोई प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो मेंस में तो कोई संभावना रही नहीं जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 नाम आज मेरे पास आए हैं ये आगे चलकर इंटरव्यू में शामिल होंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट के हिस्से पर। कल रिजल्ट आ चुका है प्री का और फ्रेंड्स, लगभग 9.5 लाख लड़कों ने अप्लाई किया था, लगभग 4.5 लाख लड़के परीक्षा में बैठे और उनमें से 15,000 के करीब लड़कों का सिलेक्शन हुआ है।
अगर हम 945,000 के बैठे हुए स्टूडेंट्स के आंकड़े को लेकर के चलें तो दोस्तों उन सभी 15,000 सफल विद्यार्थियों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो 930,000 स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए कुछ विशेष बातें। दोस्तों विशेष बातें ये हैं कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो वस्तुतः है ही ऐसा, आप नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन जो कंपैरेटिवली एक अच्छे ठोस तैयारी करते हैं और सिविल सर्विस की तैयारी के पैटर्न को जानते हैं, एग्जाम के पैटर्न को जानते हैं और जानने के साथ साथ उस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कोई ऐसी बहुत दूर की बात भी नहीं होती कि इसे कोई एक पासा फेंकने जैसी ही हार जीत समझ लें कि अगर पासा सीधे पड़ गए तो जीत गए और नहीं पड़े तो हार गए, ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन मित्रों जो चीज जितनी कठिन होती है नो डाउट कि उसके पाने की संभावना उतनी ही कम होती है। और सच पूछिए तो जिसके पाने की जितनी ज्यादा संभावना जितनी कम होती है वह उतनी ही कठिन होती है। इसीलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अपने आप में एक कठिन एग्जामिनेशन मानी जाती है और नो डाउट कि इसका लेवल तो फिर थोड़ा सा कठिन या थोड़ा सा उच्च स्तरीय है ही, जहां हमारे जो ट्रेडिशनल स्टडी है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में सामान्य तौर पर जिस तरह के क्वेश्चंस पेपर आते हैं और हम लिख करके आते हैं और फिर हमें नंबर भी मिल जाती है, उससे थोड़ा सा ये हट करके है और इसका जो ये हटकर वाला जो स्वरूप है यही इसे थोड़ा सा कठिन भी बना देता है। तो मित्रों निश्चित रूप से जो स्टूडेंट सफल हुए हैं अब उन्हें चाहिए कि वो पूरी तरह से अब अपनी तैयारी में डट जाएं, लेकिन वे क्या करें जो सफल नहीं हुए हैं। मित्रों जब आप किसी भी बड़े काम में लगते हैं तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूं और आज फिर दोहराना चाहूंगा कि आपको अपना दिल और दिमाग भी बड़ा रखना पड़ेगा। दिल और दिमाग बड़ा रखने का मतलब है कि आप हारने के लिए तैयार रहिए, फेल होने के लिए तैयार रहिए। ज्यादातर तो फेल ही होते हैं, सफलता तो कभी कभी और किसी किसी को मिलती है। तो स्वाभाविक है कि जैसे एक खिलाड़ी है, अच्छा से अच्छा खिलाड़ी भी हारता ही है और कभी कभी बहुत बुरी तरीके से हारता है, लेकिन वह उस हार को बर्दाश्त करता है, उस हार को से वह इतना निराश नहीं हो जाता, इतना हताश नहीं हो जाता, अवसाद में नहीं आ जाता कि वो खटिया ही पकड़ ले और फिर उठकर खेलने के लिए अपने आप को तैयार न कर सके। दोस्तों जो स्पोर्ट स्पिरिट की जो हम बात करते हैं वो स्पोर्ट स्पिरिट कहा ही इसे जाता है कि जो हारने के बाद भी निराश नहीं होता और उस व्यक्ति के प्रति भी मित्रता का भाव रखता है जो उसे हराता है, ये कहलाती है स्पोर्ट स्पिरिट। और मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने अंदर ये स्पोर्ट स्पिरिट जो होती है, जो एक खिलाड़ी की जो आत्मा होती है, खिलाड़ी की जो भावना होती है, उस भावना से अपने को लैस करना चाहिए। फ्रेंड्स जीवन का कहीं अंत नहीं होता है तब तक जब तक कि हम अपने उस अंतिम संस्कार वाले स्थान पर नहीं पहुंच जाते। जीवन में कोई फुल स्टॉप नहीं होता तब तक जब तक कि हमारी सांसें रुक नहीं जाती हैं। जीवन लगातार सेमी कॉलन कॉलन के माध्यम से आगे चलता रहता है। हम नहीं जानते कि आज की हमारी जो असफलता है वो आगे चलकर कितनी बड़ी सफलता बनेगी। कोई भी असफलता याद रखिए अंतिम नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है। अगर आप इस बार का अगर आप अगस्त इशू का सिविल सर्विस क्रॉनिकल पढ़ें तो आप उसमें देखेंगे कि जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आए हैं, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर हैं, वो कितने अटेम्प्ट के बाद अंततः सफल हो पाए हैं। और यहां तक कि फर्स्ट शुरू के एक दो अटेम्प्ट में तो वो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन अंततः वो फर्स्ट 10 में फर्स्ट 20 में स्थान बना पाने में सफल रहे। कैसे सफल रहे? वो भी हारे, वो भी गिरे, लेकिन वो हारे ही नहीं रह गए, वो गिरे ही नहीं रह गए। गिरे थे, थोड़ी सी देर के लिए निराशा हुई थी, हताशा हुई थी, दुख भी हुआ था, लेकिन वो फटाफट उठ खड़े हुए। तो दोस्तों गिरने के बाद हम कितनी जल्दी उठकर खड़े होते हैं इसी बात से इस बात का निर्धारण हो जाता है कि आने वाली सफलता आप कितनी जल्दी हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स हार जीत, धूप, छांव, सुख, दुख, ये सारे के सारे जीवन के ही हिस्से हैं। दो पहलू का एक पहलू है अभी फिलहाल वो कि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मानकर चलिए कि ये अंतिम स्थिति नहीं है, बिल्कुल भी अंतिम स्थिति नहीं है। दोस्तों आप सब नौजवान हैं, आप में ऊर्जा भरी हुई है, रक्त उष्ण है, गर्म खून है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भी कि अभी कि आपके पास तो भविष्य का पूरा वक्त बाकी है, आप कोई चूके हुए अतीत नहीं है, आप आने वाले भविष्य के स्वागत करता है, उसको वेलकम करने के लिए आप दरवाजे पर खड़े हैं। आप पीछे दरवाजे पर नहीं पहुंच गए हैं कि सब कुछ बीत चुका है और केवल अब स्वयं के बीतने की प्रतीक्षा की जा रही हो, आप उनमें से नहीं है, अभी तो आपकी शुरुआत हुई है। और हम नहीं जानते मित्रों कि हमारी एक असफलता या अभी की असफलता कितने बड़ी सफलता का कारण बन सकती है, और ऐसे हजार एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। मैं अब उदाहरणों को यहां क्या दोहराऊं, लेकिन फ्रेंड्स फिलोसॉफिकली आपको अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि जितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बारे में आपने प्लान किया है, उतनी ही असफलताओं के बारे में भी प्लान कीजिए, तैयार रहिए। अगर आप हौसला खो देंगे तो निश्चित रूप से मान कर चलिए कि आप सफलता को भी खो देंगे। जितनी भी दुनिया में लोग सफल हुए, चाहे किसी भी फील्ड में हुए हों, चाहे वो एकेडमिक फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो जीवन का यूं ही फील्ड हो, फिल्म हो, इंडस्ट्री हो, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, किसी भी फील्ड में जाकर के देखिए, किसी की भी जिंदगी एक रेखीय नहीं रही है कि लगातार वो समानांतर रूप से बढ़ी हो और वो अचानक ऊपर उठ गई हो, ऐसा नहीं होता मित्रों। हमेशा जैसे कि अगर हम अपने दिल का हार्ट का ईसीजी कराएं तो आप देखते हैं कि कभी रेखा ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी थोड़ी ऊपर जाती है, कभी ज्यादा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो वो रेखा हमेशा ऊपर नीचे आपको दिखाई देगी। और यदि रेखा बिल्कुल सीधी दिखाई देने लगे तो आप मान कर चलिए कि दिल ने काम करना बंद कर दिया है। जीवन भी बिल्कुल वही है, अप डाउन आते ही रहेंगे, जिंदगी में ऊपर नीचे आप होते ही रहेंगे, और यहां तक कि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तब एक अलग तरीके से आपको इस ऊपर नीचे का मुकाबला करना पड़ेगा। कभी अच्छी पोस्टिंग है, कभी बेकार पोस्टिंग है, कभी आपको निराशा मिल रही है, कहीं आपको उत्साह मिल रहा है, कहीं समर्थन मिल रहा है, कहीं विरोध झेलना पड़ रहा है, कहीं जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जिंदगी में नहीं होगा। और आप जितने महत्वपूर्ण पद पर बैठे होंगे, जितने बड़े पद पर बैठे होंगे, ये अप डाउन वाली स्थिति आपको उतनी ही ज्यादा झेलनी पड़ेगी। इसीलिए तो वो पद बड़ा है, वो पद बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सैलरी बड़ी है, वो पद बड़ा इसलिए है क्योंकि वहां चुनौतियां बड़ी हैं। तो दोस्तों जब सिविल सर्वेंट बनने के बाद चुनौतियों से छुटकारा नहीं है तो आप सोच कर देखिए कि सिविल सर्वेंट बनने से पहले चुनौतियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है। चुनौतियां सतत हैं, और सच पूछिए तो ये चुनौतियां ही हैं जो हमें बुलाती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि आकाश में निकला हुआ चंद्रमा समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है। इसी तरह से चुनौतियां लगातार हमारी एनर्जी को आकर्षित करती हैं, आमंत्रित करती हैं, और तब हम ऐसे मौकों पर ही अपने आप को समझ पाते हैं कि नहीं, हमारी ऊंचाई इतनी ही नहीं है, ये जो तरंगे हैं ये केवल 5-6 इंच की ही नहीं होती, आधे फिट की ही नहीं होती, बल्कि 10-10 फिट की भी हो सकती हैं। तो इस तरह से चुनौतियां असफलताएं, सच पूछिए तो हमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी क्षमताओं का एहसास भी कराती हैं। इसलिए फ्रेंड्स जिन्हें भी सफलता नहीं मिली है उनके सामने निराश होने का बिल्कुल कोई कारण नहीं है। मेरी अपील है कि आप सब बड़े धैर्य के साथ, बड़े शांत मन से वक्त लगा करके अपनी असफलताओं का मूल्यांकन करें कि कहां आपके पढ़ने में कमी रही, कहां चूक हुई, कहां आप भ्रमित हुए। आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी एग्जाम होने थे उससे पहले मैंने आप लोगों को सलाह दी थी कि एग्जाम देकर आने के बाद उसी रात या कम अदरवाइज नेक्स्ट डे आप अपनी पूरे उस स्थिति को लिखें, एग्जामिनेशन का पूरा इवेल्युएशन करें कि एग्जामिनेशन हाल में मानसिक स्थिति क्या थी, पेपर देखने के बाद आपको क्या लगा, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, कितनों में भ्रमित हुए, कितनों में कॉन्फिडेंट रहे, आप उन सारी चीजों का मूल्यांकन कीजिएगा, वो आपके बहुत काम आएगा। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब आप उसे काम में लें और अपना मूल्यांकन करें, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से मूल्यांकन करें, इमोशनल नहीं कि मेरा तो पेपर अच्छा था, मेरा तो पेपर अच्छा था, मैं नहीं कर सकता, नॉट एट ऑल। यूपीएससी किसी से भी दुश्मनी नहीं निकालती है, वो क्यों निकालेगी, उसको क्या लेना देना है। तो सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हुए साहस के साथ पूरा निर्मम होकर तटस्थ होकर अपना मूल्यांकन कीजिए और भविष्य के लिए फिर एक योजना बनाइए। अभी आपके पास नेक्स्ट ईयर में अपीयर होने के लिए बहुत वक्त बाकी है। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को मैं समाप्त करता हूं और अब आता हूं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, वो है कल के AIR न्यूज का हिस्सा। मित्रों, कल के AIR न्यूज में छोटी छोटी कई खबरें हैं, महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जिसको हम लोग एक बड़े विस्तार के साथ एक्सप्लेन कर सके। कुछ तो खबरें ऑलरेडी ऐसी हैं जिन्हें हम विस्तार के साथ पहले एक्सप्लेन कर भी चुके हैं। जैसे एक जो इंपॉर्टेंट खबर मुझे लगी, आपको मालूम है कि फर्स्ट न्यूज में तो बिहार विधानसभा में जो कल मतदान हुए हैं उनको लेकर के खबर थी, तो वो आपके सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। हाँ, पूरे चुनाव हो जाने के बाद जब परिणाम आएंगे तो उन परिणाम के जो समाजशास्त्रीय और राजनीतिक विश्लेषण जो होंगे वो हमारे लिए कुछ काम के हो सकते हैं, तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो मुझे लगती है, वो छोटी सी खबर है लेकिन एक कंटेंट के रूप में, एक तथ्य के रूप में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक प्रदूषण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में दिल्ली में एक टैक्स लगाया है, कह लीजिए टैक्स इस तरीके का लगाया है कि वे बड़े वाहन जो शहर में प्रवेश करेंगे उनको मतलब क्षमता के अनुसार है 700 रुपए और 1300 रुपए का क्षतिपूर्ति शुल्क देना पड़ेगा, वो प्रदूषण फैलाने के आरोप में कि ये प्रदूषण फैला रहे हैं, और उस प्रदूषण फैलाने का एक दंड है आप कह लीजिए। ये एक छोटी सी खबर थी और यह भी 4 महीने के लिए केवल प्रायोगिक तौर पर किया गया है। मित्रों, जब ऐसी कोई भी खबर आती है तो मुझे लगता है कि एक सिविल सर्विस की बहुत अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रुके और इसके बारे में थोड़ा सोचे। सोचने का मतलब है कि इससे जुड़ी हुई जो पिछली चीजें हैं, जो जानकारियां हैं, उनको भी रिकॉल करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। इसी बहाने वो हमारा रिवीजन हो जाता है और उस तथ्य पर, उस टॉपिक पर हमारी पकड़ भी अपेक्षाकृत मजबूत बन जाती है। अन्यथा क्या होता है मित्रों, होती तो ये बातें सरल सरल ही हैं, सहज ही हैं, कोई बहुत ही समझने के लिए कोई इसमें बहुत बड़ा फार्मूला तो होता नहीं है, लेकिन चूंकि हम उसे रिवाइज नहीं करते रहते हैं और हम रोज पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के कारण अलग अब नए नए इंफॉर्मेशन की तहें उसके ऊपर जमती चली जा रही हैं, तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन हैं वो नीचे दबी रह जाती हैं और जिसके कारण वो जब जरूरत होती है तो फट से नहीं निकल पाती। और यदि हम उनको रिवाइज करते रहते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि हमारे दिमाग में ताजी बनी रहती है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप पिछली कुछ बातों को याद करने की कोशिश करें। उसमें से कुछ बातें ये हो सकती हैं जैसे कि दिल्ली में जब सर्वे हुआ है तो उसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषण फैल रहा है वो वाहनों के कारण हो रहा है। फिर आप अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से पहले जब प्रदूषण फैल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस समय CNG गैस के बारे में सरकार को निर्देश दिए, CNG गैस आ गई फिर भी समस्या वही बनी हुई है, इसके बाद मेट्रो रेल आ गई तब भी समस्या वही बनी हुई है, और यहां तक अभी कुछ दिनों पहले एक आंकड़ा आया था कि मेट्रो रेल के आ जाने से लगभग 2.25 लाख व्हीकल्स, गाड़ियां सड़कों पर नहीं है, यानी कि अगर मेट्रो नहीं आई होती तो 2.25 लाख गाड़ियों की और भीड़ होती। यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि नगरीय प्रदूषण में सबसे ज्यादा जो रोल या कितना ज्यादा रोल वाहनों का हो गया, सबसे ज्यादा रोल वाहनों का हो गया है। अगर हम पूरे प्रदूषण को लेते हैं तो नो डाउट कि एक तो वाहन है और दूसरे उद्योग है, सबसे ज्यादा वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ पिछली बातों को हम याद कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे मित्रों कि एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो खड़ा होता है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिहाज से आपको याद करना चाहिए, वो ये कि चलिए ये जो वाहन है ये प्रदूषण शुल्क दे देंगे, है ना। मान लीजिए कि एक ट्रक है, वो कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुंचा रहा था इससे पहले, तो वो 20,000 रुपए ले रहा था। अब उसको प्रदूषण शुल्क 700 रुपए देना होगा या 1300 रुपए देना होगा, तो उसको क्या है, वो 20,000 रुपए की जगह जिसका सामान पहुंचा रहा है उससे वो 21,000 रुपए ले लेगा। तो क्या इस शुल्क से, नंबर एक, हमारा प्रदूषण कम हो सकेगा? देखिए, लगातार पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, डीजल महंगा होता जा रहा है, गाड़ियों पर सरकार शुल्क लगाना शुरू कर दी है, लेकिन गाड़ियों की मांग कम नहीं हो रही है, गाड़ियों की सेल बढ़ रही है और सड़कें लगातार गाड़ियों से भरती चली जा रही हैं। तो इसी को आप अप्लाई कर दीजिए, तो क्या इससे प्रदूषण कम होगा? और यदि प्रदूषण कम नहीं हुआ तो शुल्क लगाने का मतलब केवल ये हुआ कि भाई सरकार को कुछ पैसा मिल जाएगी। हालांकि अब सरकार का कहना यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल वो प्रदूषण को नियंत्रित करने में करेगी, लेकिन क्या व्यवहार में ये सब चीजें देखने में आई हैं? गंगा सफाई अभियान पर 1985-86 से कुछ शुरू है और हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा पहले से भी ज्यादा प्रदूषित है। सभी दूसरी नदियों के बारे में देख लीजिए, दूसरे शहरों के बारे में देख लीजिए। तो जो हमारी जो कोशिशें हो रही हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, उनकी इफेक्टिविटी अभी उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। ये बात अलग है कि वो कोशिश भी नहीं हुई होती तो पता नहीं हाल कितना बुरा होता, वो एक अलग बात है। तो इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि प्रदूषण फैलाने वालों को दंड दिया जाए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रदूषण ही न होने दिया जाए। और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है वो फिर से आप लोग सोच सकते हैं। तो मित्रों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, क्योंकि एनवायरमेंट आपके सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और आपको मालूम है कि अभी दिसंबर में पेरिस में सम्मेलन होने जा रहा है, वो प्रदूषण को ही लेकर के, खासकर गैस उत्सर्जन को ही लेकर के है, और ये अब दुनिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू बन गया है। समझ लीजिए कि एक तो आतंकवाद है जो आदमी फैला रहे हैं, और दूसरा ये प्रदूषण है जो एक अलग तरीके का आतंकवाद है, कह लीजिए, इससे भी लोग आतंकित हैं। और इसमें जो भारत प्रदूषण न्याय की जो बात कर रहा है, पर्यावरण न्याय की जो बात कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हमारी जीवन शैली नहीं बदलेगी, जब तक हम प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीना नहीं सीखेंगे, तब तक शायद हम प्रदूषण को उतना नियंत्रित ना कर पाए। मित्रों, चूंकि ये खबर थी और इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है शहरी प्रदूषण के ऊपर, जो राष्ट्रीय सहारा के कल के अखबार में छपा है, ये मैं आप लोगों को नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं। अच्छा आर्टिकल है, इसमें आपको कुछ डेटा मिलेंगे कि किस तरह से वायु प्रदूषण से मरने वालों में अब जो संख्या है वायु प्रदूषण के कारण पांचवां भाग हो गया। 20% लोग दुनिया के केवल वायु प्रदूषण से मर रहे, और दिल्ली के जो बच्चे हैं उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले, आपको एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा कि जजेस ने क्या कहा था, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मेरा पोता अपने नाक में वो लगाए रखता है प्रदूषण से बचने के लिए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होती चली जा रही है। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो औद्योगिक उत्पादन को लेकर के थी, हालांकि बहुत छोटी सी खबर है कि 6.4% रहा है, जो पिछले 3 सालों से बहुत बेहतर रहा है। इसका मतलब है कि औद्योगिक उत्पादन थोड़ा सा भारत का ठीक हो रहा है। और उसमें एक सबसे अच्छी खबर थी, वो थी कि निर्माण क्षेत्र में तेजी आई है, जो अभी तक बिल्कुल, जो रियल एस्टेट का जो एरिया है वो बिल्कुल अभी तक सुस्त पड़ा हुआ था। और चूंकि रियल एस्टेट का एरिया ऐसा होता है जो एक साथ बहुत सी जगहों पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इस क्षेत्र का संबंध उद्योगों के दूसरे बहुत से क्षेत्रों से है, सीमेंट है, स्टील है, ईंट है और दूसरी बहुत सी चीजों से है। तो ये एक अच्छी खबर है, एक थोड़ी सी जानकारी के लिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मुझे लगता है खासकर जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के रूप में लेकर के बैठना चाहते हैं, कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो स्कॉटलैंड का मतलब है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड के जो इकोनॉमिस्ट हैं ऑगस्ट डेटॉन, उनको मिला है। नाम आप देख लीजिएगा, थोड़ा उच्चारण में गड़बड़ी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है, वो उनको खासकर उपभोग, गरीबी और कल्याण के बारे में अपनी थ्योरी डेवलप करने के लिए मिला है। यानी कि कंजम्पशन, पूरी दुनिया में उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, गरीबी पावर्टी लगातार लिबरलाइजेशन के बाद तो लगातार पावर्टी बढ़ती चली जा रही है, गैप बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है धनी और गरीब लोगों के बीच में, और वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से धीरे धीरे अपने को सोशल वेलफेयर से विड्रा करती चली जा रही है, उनके बारे में अपने थ्योरी डेवलप करने के लिए ये दिया गया है, जिसका भारत के साथ सीधा सीधा संबंध है इसका। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक इकोनॉमिक टाइम्स में एडिटोरियल कमेंट है, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। उन्होंने बताया है कि जैसे जो पावर्टी लाइन है उसको नए तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सबका जो कंजम्पशन का सिस्टम है वो एक जैसा है, सबकी जो आय है वो एक जैसी है। अब जैसे गरीब हैं, गरीब तो दालों का उपयोग ही नहीं करते, बेचारे दाल खा ही नहीं सकेंगे, अब तो 200 रुपए 150 रुपए किलो होने जा रही है। अपर क्लास, मिडिल क्लास उसका यूज करता है। तो इस तरह से अगर आप पॉवर्टी लाइन में उसको शामिल करते हैं तो वो सही तरीके से उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, उन अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग थ्योरी डेवलप की जानी चाहिए, एक ही थ्योरी को आप सभी वर्गों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, जो मैं समझता हूं कि शायद बहुत प्रैक्टिकल भी है। फ्रेंड्स, एक दुखद सूचना उसमें यह थी कि जो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं कसूरी जी, आपने अखबारों में पढ़ा, न्यूज चैनल्स पर भी आपने देखा होगा और न्यूज में तो था ही, उनकी पुस्तक का विमोचन होना था और सुधींद्र कुलकर्णी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनके प्रेस सलाहकार भी थे, वो इसके प्रायोजक थे, तो उनके मुंह पर स्याही, शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने स्याही पोती और ये एक इशू बन गया। हालांकि पुस्तक का विमोचन हुआ, सभी पार्टियों ने, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी बहुत तीखी आलोचना की है। और बस वो उसी तरह की एक चीज है कि किस तरह से एक असहिष्णुता का फैलाव सा लोगों को दिखाई दे रहा है, और आपको मालूम है कि इसी वजह से जो साहित्य एकेडमी है वो भी कितनी ज्यादा एक तरह से चर्चा के केंद्र में आ गया है, खासकर जब साहित्यकारों ने उसके द्वारा दिए गए पुरस्कारों को लौटाना शुरू किया। तो दोस्तों, अभी तक एक जो क्वेश्चन उठ रहा था वो एक समाज में घटती हुई सहिष्णुता इसका, या एक फैलता हुआ तनाव, एक प्रश्न ये उठ रहा था कि क्या ये सच है, क्यों हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इसके साथ ही साथ अब एक क्वेश्चन और भी बन रहा है कि हमारी जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो चाहे वो FTTTI हो, टेलीविजन संस्थान हो, स्वायत्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, या साहित्य कला एकेडमी जैसी संस्थाएं हों, इनका राजनीति से कितना संबंध होता है या नहीं होता है, या जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जिस तरह के कि अभी साहित्यकार अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं और उसको लेकर के एकेडमी थोड़ी सी परेशान सी भी है, तो जो सामाजिक समस्याएं होती हैं या जो सांस्कृतिक समस्याएं होती हैं जब इस तरह की कोई बात खड़ी होती है, उसके उस समय पर जो इस तरह की संस्थाएं होती हैं उनको क्या स्टैंड लेना चाहिए, उनको प्रोएक्टिव भूमिका निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए, क्या उनकी भूमिका केवल, जैसे साहित्य एकेडमी है तो उसकी भूमिका केवल साहित्य लेखन तक ही हो, या उसकी भूमिका समाज में बढ़ करके एक एक्टिविस्ट के रूप में भी होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि चूंकि साहित्य कला संस्कृति आपके सिलेबस का एक हिस्सा है और इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो संस्थाओं के राजनीतिकरण या संस्थाओं की एक एक्टिविस्ट भूमिका होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर भी आपको अपना मत स्थिर कर लेना चाहिए। यह मुझे एक इंपॉर्टेंट इमर्ज होता हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, एक फिर छोटी सी खबर इस बात को लेकर भी की थी कि हम आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्रपति अभी फिलिस्तीन पहुंचे हैं। फिलिस्तीन भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है और उसके जो लीडर थे यासिर अराफात, मिसेस गांधी और उनके बहुत अच्छे संबंध थे, और वो तो सिस्टर कहा करते थे यासिर अराफात प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी को। तो भारत और फिलिस्तीनी के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और भारत के लिए फिलिस्तीनी बहुत मायने भी रखता है। ये पहला मौका है जब भारत के कोई राष्ट्रपति फिलिस्तीन गए हुए हैं। चूंकि हमारे एकदम पड़ोसी देश तो नहीं है लेकिन काफी नजदीक भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो मुझे लगता है कि भारत और फिलिस्तीन के संबंधों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही थोड़ी सी जानकारी, उतना ही अपने आप में पर्याप्त होगा। मित्रों, तो ये कुछ खबरें थी न्यूज़ की, और मैं अब आता हूँ न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर के बारे में मैं आपको न्यूज़ के साथ ही कुछ कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ। खासकर अभी मैंने जो एकेडमी की बात कही, उसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल कमेंट दैनिक भास्कर में छपा है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, अखबारों में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है आरटीआई के ऊपर। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसमें उन्होंने पूरा, जब से राइट टू इंफॉर्मेशन शुरू हुआ है वहां से लेकर के और अभी तक, कैसा कैसे वो डेवलप हुआ, कितनी इसको सफलताएं मिली, क्या क्या इसके ऊपर संकट आए, इसका रोल अभी तक समाज में क्या रहा है, ये सारी बातों का एक तरह से आप कह लीजिए कि ये संकलन जैसा है, एक ऐसे जैसा है। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आरटीआई है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और खासकर आरटीआई को तो मैं ये मानकर चलता हूं कि इस कानून ने भारत के हर नागरिक को एक चलता फिरता इंस्पेक्टर बना दिया है कि वो किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले सकता है। इसको लेकर के लगातार आलोचनाएं भी होती हैं, खासकर जिस तरह से इसके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। इसमें इन्होंने डेटा दिया है कि अभी तक लगभग 45 लोग जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं वो मारे जा चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग है। मित्रों, आप सीधे सीधे ये निष्कर्ष मत निकालिए कि आरटीआई फेल हो गया, क्योंकि अभी भी आखिर भ्रष्टाचार उतना ही है और लोग ईमानदार नहीं हैं। सरकारी काम कराने में रिश्वत देनी पड़ती है, टाइम लगता है, लेकिन ये एक तरफा निष्कर्ष होगा। मुझे लगता है इसने ऐसी बहुत सी चीजों को रोका है जो अन्यथा होती, वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो आरटीआई के बारे में आपको अपना मत स्थिर करना चाहिए, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनको जब आरटीआई के दायरे में लाने की बात की गई तो उसे कोई भी पार्टी अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही है, पचा नहीं पा रही है। इसीलिए अभी तक वो पार्टियां अभी तक शामिल भी नहीं हो पाई हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और दोस्तों, फिर अंतिम क्लिपिंग्स है, खासकर किसानों को लेकर के, जो किसानों की अभी स्थिति, भारतीय कृषि व्यवस्था की जो स्थिति, अशोक गुलाटी जी का लिखा हुआ है। और अशोक गुलाटी खासकर जो एग्रीकल्चर फील्ड के बहुत अच्छे जानकार हैं, मैं पहले भी इनके बारे में आपको बता चुका हूं और कई इनके आर्टिकल में प्रोवाइड भी कर चुका हूं। लगभग लगभग उसी को उन्होंने अपनी बातों को रखा है एक अभी के वर्तमान के संदर्भ में, तो इसको आप लोग देख लेंगे, इसी बहाने आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं ईमेल पर। दो मित्रों के मेल मेरे पास हैं जो अभी अक्टूबर की क्लासेस में भोपाल आ रहे हैं। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं और कहा है कि जो भी स्टूडेंट उनके क्षेत्र से आ रहे हों, यदि वो चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें एक फ्रेंड है धर्मजीत सिंह, जो लखनऊ से आ रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9598555924। और दूसरे मित्र का नाम है सत्येंद्र सिंह, जो इलाहाबाद से आ रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 7398888163। तो मित्रों, अब जो दूसरे मेल हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मेल लिखे हैं। और युवराज सिंह नई दिल्ली से हैं। युवराज, आपने बहुत बहुत प्यारा मेल लिखा है और बहुत अच्छा मेल लिखा है, इसके लिए आपको स्पेशल थैंक्स। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी भावनाओं को इसी तरह से बनाए रखें और भाषा पर इसी तरीके से काम करते रहें। आपकी भाषा बहुत अच्छी है और एक अच्छी भाषा होना सिविल सर्विस में आपको माइलेज दिलाता है। अब कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं मित्रों। उसमें है उत्कर्ष दीप पटना से, सोमनाथ विश्वास पश्चिम बंगाल से, रूपेश कुमार रजक भोपाल से, हरिओम तिवारी इलाहाबाद से, उपेंद्र कुमार गुप्ता बेतिया बिहार से, आशीष वर्मा मेरठ से, मनमत दीक्षित दिल्ली से, सचिन वर्मा इलाहाबाद से, पवन घाटशिला से और चिराग ढोकलिया अहमदाबाद से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आभार और धन्यवाद उनके प्रति भी जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब इसे यहीं विराम देते हैं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।